नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रचा। असम में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भाजपा तैयार। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन की जीत। तमिलनाडु में टीवीके 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरगर्मी तेज। 7 मई को सम्राट कैबिनेट का विस्तार होने की संभावना। और पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में आंधी, बारिश और वज्रपात की घटनाओं में 12 लोगों की मौत। दक्षिण बिहार के कुछ स्थानों पर आज भी आंधी और वज्रपात की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 294 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दल को 1 सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। इधर तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री करगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। टीवीके राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सत्तारूढ़ डीएमके ने 59 सीटें हासिल की हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर 126 सदस्यीय विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। दूसरी ओर कांग्रेस को 19 सीटें, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और रायजोर दल को 2-2 सीटें तथा टीएमसी को 1 सीट मिली है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती जबकि उसकी सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीतकर गठबंधन को पूरे राज्य में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने केरलम विधानसभा चुनाव में 1 सीट पर जीत दर्ज की है। राजद प्रत्याशी पी के प्रवीण ने कुथुपरम्बा सीट से विजय हासिल की है। पार्टी के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने राजद उम्मीदवार की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पार्टी की केरलम इकाई को बधाई दी है। गौरतलब है कि राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने पार्टी प्रत्याशी श्री प्रवीण के समर्थन में कई सभाएं और रोड शो भी किए थे। इधर केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 30 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 18 सीटें मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह जीत कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। श्री मोदी दिल्ली स्थित भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में आयोजित समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह परिणाम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की जीत है।
ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है।
आप सबको कहा था गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज माँ गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की सराहना भी की। इस अवसर पर श्री नवीन ने चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की जनता को भाजपा और एनडीए पर अपना समर्थन और विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मिली यह शानदार जीत पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास और समर्पण का परिणाम है।
जो ऐतिहासिक समर्थन हमारे देवतुल्य जनता ने, भारत की यशस्वी जनता ने इन पांच राज्यों में जो हमें समर्थन दिया है, उसके लिए मैं हृदय की गहराई से उन तमाम पांचों राज्य के लोगों को अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारे नेतृत्व के प्रति, भाजपा और एनडीए के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है।
विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व पर अपना पूर्ण भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि यह जनादेश पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में विकास, सुशासन और जन कल्याण के कार्यों को नई गति प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भाजपा की जीत पर कहा कि यह जीत जनसेवा, सुशासन और विकास के प्रति पार्टी नेतृत्व के अटूट समर्थन का परिणाम है। श्री चौधरी ने इसके लिए पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी की जनता के प्रति आभार जताया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जीत का श्रेय गरीबों के मसीहा, कर्मयोगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को जाता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बंगाल में भगवा लहरा गया है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति का किला ध्वस्त हो गया है। भाजपा के पश्चिम बंगाल प्रभारी और पूर्व मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की शानदार और ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं को समर्पित है। उन्होंने कहा कि जनता ने टीएमसी के भय की जगह प्रधानमंत्री श्री मोदी पर भरोसा कर जनादेश दिया है।
पश्चिम बंगाल की जनता उनके 15 वर्षों के कुशासन से तंग आ चुकी थी, उनकी निर्मम सरकार से तंग आ चुकी थी, लोगों के अंदर भय का एक माहौल बना दिया था। पश्चिम बंगाल की जनता ने जिस प्रकार का जनादेश देने का निर्णय किया और वो बहुत साफ है कि भय से अब बंगाल की जनता बाहर आ गई।
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मेहनत का परिणाम है। वहीं लोजपा रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यह सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार 7 मई को होने की संभावना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया जाएगा। दिल्ली प्रवास के बाद कल पटना लौटे श्री चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की और मंत्रिमंडल विस्तार पर विमर्श किया। माना जा रहा है कि इस दौरान संभावित मंत्रियों के नामों और विभागों को लेकर भी चर्चा हुई है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने एनडीए के घटक दलों के प्रमुख नेताओं से भी मुलाकात की। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इस दौरान इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा चलने की संभावना है।
24 घंटों के दौरान राज्य के अररिया, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व के जिलों, मधेपुरा, सहरसा, सारण एवं सिवान जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
इधर कल पटना, गया, सिवान, दरभंगा, अररिया और कटिहार समेत आसपास के कई जिलों में तेज आंधी के साथ हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज आंधी के कारण कई स्थानों पर बिजली के खंभे और पेड़ उखड़ गए। कई स्थानों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होने से आवागमन भी बाधित हुआ है। वहीं इस बारिश से खेतों में लगी फसल के साथ आम, लीची और सब्जियों को नुकसान पहुंचा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान आंधी, बारिश और वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो गई। पूर्वी चंपारण जिले में 5, औरंगाबाद में 4 और गया जिले में विभिन्न घटनाओं में 3 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन घटनाओं पर शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रूपये अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का निष्पादन लोक अदालतों के माध्यम से करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने एक लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि 9 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रदेश के जिला न्यायालय ट्रैफिक चालान से जुड़े मामले का निपटारा करना सुनिश्चित करेंगे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित पुरुष T20 प्रतियोगिता के तहत अलग अलग स्थानों पर खेले गए मैच में बेगूसराय, खगड़िया और कटिहार की टीमों ने जीत दर्ज की है। बिहार यूथ फाउंडेशन महिला T20 क्रिकेट लीग का आयोजन करेगा। इसके लिए 10 मई को पटना के दानापुर में चयन शिविर का आयोजन किया जाएगा। पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत महेंद्रू स्थित एक लॉज में छापेमारी कर पुलिस ने हवाई फायरिंग के आरोपी विशाल कुमार उर्फ राजा कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से ऑटोमेटिक पिस्तौल और कारतूस बरामद किया गया है। पिछले दिनों विशाल कुमार का पटना में हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ था। इधर अगमकुआं थाना क्षेत्र अंतर्गत नंदलाल छपरा मोड़ के पास पुलिस ने छापेमारी कर 10 किलो से अधिक गांजा के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, बंग भूमि में खिला कमल, केरल ने कांग्रेस को चुना। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर लिखा है, बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार। दैनिक भास्कर ने तमिलनाडु के चुनाव परिणाम का शीर्षक बनाया है, 2 साल पहले पार्टी बनाई और 64 साल पुरानी द्रविड़ राजनीति की जड़ें हिला दी। प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, आज वर्षों की साधना सिद्धि में बदली, गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल ही कमल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रचा। असम में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भाजपा तैयार। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन की जीत। तमिलनाडु में टीवी के 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरगर्मी तेज। 7 मई को सम्राट कैबिनेट का विस्तार होने की संभावना। और पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में आंधी, बारिश और वज्रपात की घटनाओं में 12 लोगों की मौत। दक्षिण बिहार के कुछ स्थानों पर आज भी आंधी और वज्रपात की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।